नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में कई विकास परियोजनाओं का अनावरण करेंगे। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना लोकसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे पर सहमत। भारतीय रिजर्व बैंक केंद्र सरकार को लाभांश के रूप में 28,000 करोड़ रुपए देगा। सीरिया में 2 बम विस्फोटों में 24 लोगों की मौत और मुक्केबाजी में अमित पंघल और निखत जरीन सहित 4 भारतीय आज बुल्गारिया में स्ट्रांजा टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक के लिए खेलेंगे। समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में विभिन्न विकास परियोजनाओं का अनावरण करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत के लाभार्थियों से बातचीत भी करेंगे।
प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र में डीजल से इलेक्ट्रिक में बदले गए 10,000 हॉर्स पावर के पहले लोकोमोटिव इंजन का लोकार्पण करेंगे। वह वहां लगी हुई एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री खीर गोवर्धन स्थित संत गुरु रविदास मंदिर जाएंगे और वहां रविदास जन्म स्थली विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे तथा संत गुरु रविदास को श्रद्धांजलि देंगे और वहां एकत्रित श्रद्धालुओं को संबोधित करेंगे। श्री मोदी बीएचयू कैंपस में नवनिर्मित महामना मदन मोहन मालवीय कैंसर हॉस्पिटल तथा भाभा कैंसर हॉस्पिटल लहर तारा का बीएचयू कैंपस से लोकार्पण करेंगे। पुलवामा घटना को देखते हुए प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। एमएस यादव, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।
भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने अपने लंबे समय से चल रहे मतभेदों को दूर करते हुए आगामी लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों के लिए सीटों के बंटवारे पर समझौते की घोषणा की है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में मुख्यमंत्री फडणवीस ने गठबंधन के ब्यौरे की घोषणा की। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 25 सीटों पर और शिवसेना 23 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एक रिपोर्ट।
इस अवसर पर भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि शिवसेना और अकाली दल उनके सबसे पुराने सहयोगी रहे हैं और कई मुश्किलों के बावजूद उनका साथ नहीं छोड़ा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि दोनों दलों के बीच 25 साल का साथ है और इस दौरान दोनों ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन दोनों की विचारधारा समान रही है। महागठबंधन को एक प्रहसन बताते हुए श्री फडणवीस ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर, किसानों की कर्ज माफी और गरीबों के उत्थान से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। इन मुद्दों के समाधान के लिए पर्याप्त उपाय किए जाएंगे। मुंबई से सोनाली खड़ियाल पाटिल के साथ मैं राजेश पांडे।
रिजर्व बैंक ने 31 दिसंबर 2018 को समाप्त हुई छमाही के लिए केंद्र सरकार को 28,000 करोड़ रुपए का अंतरिम लाभांश देने की घोषणा की है। एक बयान में रिजर्व बैंक ने कहा है कि ये निर्णय सीमित लेखा परीक्षा समीक्षा के आधार पर कल नई दिल्ली में भारतीय रिजर्व बैंक के बोर्ड की बैठक के बाद किया गया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बोर्ड को संबोधित किया। बैठक में रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास के अलावा 4 डिप्टी गवर्नरों और अन्य सदस्यों ने हिस्सा लिया। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने यमुना के पास के शहरों के लिए करीब 1388 करोड़ रुपए लागत की सीवरेज ढांचागत और अन्य परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में सीवेज उपचार संयंत्रों के निर्माण और जीर्णोद्धार, इनकी ऑनलाइन निगरानी प्रणाली तथा अन्य ढांचागत परियोजनाएं शामिल हैं। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि सरकार पहली बार देशभर में वक्फ संपत्तियों का उपयोग करने के वास्ते 100% वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है, ताकि समाज के जरूरतमंद लोगों को शैक्षणिक रूप से सशक्त बनाया जा सके और उनका रोजगार परक कौशल विकास सुनिश्चित हो सके। कल नई दिल्ली में श्री नकवी नवगठित केंद्रीय वक्फ परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के लिए 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आपात उपाय सहायता प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और जम्मू कश्मीर शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश और नागालैंड में ये सेवा पहले ही शुरू की जा चुकी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
इस प्रणाली के अंतर्गत मुसीबत में फंसा व्यक्ति अखिल भारतीय नंबर 112 डायल कर सकता है। इसके अंतर्गत सभी राज्यों को एक प्रतिबद्ध आपात उपाय केंद्र ERC की स्थापना करनी होगी। कोई भी नागरिक अपने स्मार्टफोन पर 3 बार लगातार पावर बटन दबाकर ERC प्रणाली को सक्रिय कर सकता है। मंत्रालय ने कहा है कि फीचर फोन के मामले में 5 या 9 बटन को लंबे समय तक दबाकर ये प्रणाली सक्रिय की जा सकती है। ERC जिला कमान केंद्रों और आपात सेवा वाहनों के साथ जुड़े होंगे, जिनके माध्यम से पीड़ितों की मदद की जाएगी। गृहमंत्री 2 पोर्टलों का भी उद्घाटन करेंगे। ये हैं यौन अपराधों के लिए जांच प्रणाली पोर्टल और सुरक्षित शहर निगरानी पोर्टल। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
राजस्थान उच्च न्यायालय ने रॉबर्ट वाड्रा की गिरफ्तारी पर रोक बढ़ा दी है और उन्हें प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है। वाड्रा पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। वाड्रा के वकील द्वारा अदालत को जांच में सहयोग का आश्वासन दिए जाने के बाद न्यायमूर्ति PS भाटी ने अगली सुनवाई 15 मार्च तय कर दी। सीरिया में उग्रवादियों के कब्जे वाले इदलिब में 2 बम विस्फोटों में 24 लोग मारे गए हैं। सीरियाई मानवाधिकार निगरानी संस्था ने बताया है कि पहला विस्फोट इदलिब के मुख्य शहर में कार में रखे बम से किया गया। घटनास्थल पर एम्बुलेंसों के पहुंचने के तुरंत बाद मोटरसाइकिल में रखे गए बम से दूसरा विस्फोट किया गया। अब तक किसी ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज बुल्गारिया और मोरक्को सहित 3 देशों की यात्रा के तीसरे और अंतिम चरण में स्पेन की राजधानी मैड्रिड पहुंच गई हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने एक ट्वीट में कहा कि श्रीमती सुषमा स्वराज स्पेन के विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगी। यात्रा के दूसरे चरण में मोरक्को में श्रीमती स्वराज और मोरक्को के विदेश मंत्री नासिर बोरीता के बीच रबात में शिष्टमंडल स्तर की बातचीत के बाद 4 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए गए। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में श्रीमती स्वराज ने कहा कि इनमें आतंकवाद की चुनौती से निपटने के लिए संयुक्त कार्यदल स्थापित करने, आवास और मानव बस्तियों के निर्माण में सहयोग, व्यापारिक वीजा जारी करने के लिए आपसी आधार पर प्रक्रियाओं को सरल बनाने और युवा मामलों में सहयोग से जुड़े सहमति पत्र शामिल हैं। सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद आज शाम 2 दिन की भारत यात्रा पर आ रहे हैं। उनके साथ वरिष्ठ मंत्रियों, अधिकारियों और व्यापारियों का प्रतिनिधिमंडल होगा। सरकारी सूत्रों ने नई दिल्ली में बताया कि सऊदी अरब जम्मू कश्मीर तथा आतंकवाद को लेकर भारत की स्थिति अच्छी तरह समझता है। दिल्ली में सऊदी अरब के युवराज का कल पारंपरिक स्वागत किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के जम्मू में आज 5वें दिन भी कर्फ्यू जारी है। कल कुछ हिस्सों में थोड़ी देर के लिए छूट के दौरान कहीं से किसी अप्रिय घटना की खबर नहीं मिली। शहर में पुलवामा आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन के बाद कर्फ्यू लगाया गया था। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से बचने को कहा है। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में आज माघ पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालु पवित्र कुंभ स्नान कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज तड़के हजारों श्रद्धालुओं ने 5वें स्नान के दौरान पवित्र संगम में डुबकी लगाई।
मेला प्रशासन ने स्नान के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। हाल ही में पुलवामा आतंकवादी हमले के मद्देनजर मेला क्षेत्र और उसके आसपास सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं तथा अर्धसैनिक बलों की अतिरिक्त टुकड़ियां भी तैनात की गई हैं। इसके अलावा प्रयागराज में सभी शैक्षणिक संस्थानों को 3 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के मद्देनजर जिले में यातायात प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। आम लोगों की सुविधा के लिए रेल प्रशासन 49 विशेष ट्रेन और उत्तर प्रदेश परिवहन निगम 2500 से अधिक बसें चला रहा है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, कुंभ सिटी, प्रयागराज।
गुरु रविदास जयंती आज मनाई जा रही है। गुरु रविदास 14वीं सदी के संत और उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के सुधारकों में से एक थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविदास जयंती के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने छत्रपति शिवाजी महाराज को आज उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। बुल्गारिया के सोफिया में स्ट्रांजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट के पुरुष वर्ग में आज अमित पंघल और महिला वर्ग में निखत जरीन, मंजू रानी और मीना कुमारी देवी अपनी अपनी श्रेणी के फाइनल मुकाबले खेलेंगे। अमित पंघल का मुकाबला कजाकिस्तान के तेमिरतस झुआपोव से होगा। निखत जरीन फाइनल में आज उनका सामना फिलीपींस की मैग्नी आरिश से, मंजू रानी का फिलीपींस की गेबुका जोशी से और मीना कुमारी देवी का फिलीपींस के ही विलिगास आयरा से होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
धन्यवाद प्रियंका। 100 घंटे में मार गिराया पुलवामा का मास्टरमाइंड। दैनिक जागरण और जनसत्ता सहित सभी अखबारों ने पुलवामा आतंकी हमले के षड्यंत्रकारी जैश कमांडर कामरान सहित 3 दहशतगर्दों को सुरक्षा बलों द्वारा ढेर किए जाने को प्रमुखता दी है। बकौल दैनिक भास्कर, कामरान अफगानिस्तान में 28 देशों की सेना से 3 साल बचता रहा, हमारी सेना ने ढेर किया। नवभारत टाइम्स लिखता है 16 घंटे चली मुठभेड़ में मेजर सहित 5 वीर भी शहीद। राजस्थान पत्रिका ने अलर्ट शीर्षक से लिखा है पुलवामा हमले के बाद पश्चिमी सीमा पर गांधीनगर से बाड़मेर तक पाकिस्तानी सेना की बड़ी हलचल। राष्ट्रीय सहारा ने आतंकवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तल्ख टिप्पणी को अहमियत दी है, अब बात नहीं कार्रवाई का वक्त। राष्ट्रीय सहारा ने बताया है आतंकी हमले के विरोध में पाकिस्तानी कलाकारों के बॉलीवुड में काम करने पर लगा पूर्ण प्रतिबंध। कुलभूषण जाधव मामले पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सुनवाई पर अमर उजाला के शब्द हैं, भारत ने कहा पाकिस्तान ने सारे नियम तोड़े, बिना जांच सबूत जाधव को दी सजा। सुनवाई के दौरान भारतीय अफसर दीपक मित्तल के पाकिस्तान प्रतिनिधि से हाथ नहीं मिलाने को भी हिन्दुस्तान और हरिभूमि सहित अधिकांश अखबारों ने सचित्र दिया है। राजनीतिक हलचल पर भी अखबारों की नजर है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है 25 साल पुराने दोस्त भाजपा शिवसेना फिर साथ में लड़ेंगे आम चुनाव। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है भाजपा को आखिर बड़ा भाई माना शिवसेना ने। देशबंधु की खबर है पूर्व क्रिकेटर और भाजपा नेता कीर्ति आजाद कांग्रेस में शामिल। रिजर्व बैंक की केंद्रीय बोर्ड बैठक के बाद दैनिक ट्रिब्यून का आकलन है लोन सस्ते होने की आस, बैंक प्रमुखों से ब्याज दरों पर बात करेंगे आरबीआई गवर्नर। दैनिक भास्कर की खबर है गांधी नेहरू और सरदार पटेल की प्रतिमा बनाने वाले मूर्तिकार रामसुतार और 2 अन्य टैगोर पुरस्कार से सम्मानित।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में कई विकास परियोजनाओं का अनावरण करेंगे। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना लोकसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे पर सहमत हो गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक केंद्र सरकार को लाभांश के रूप में 28,000 करोड़ रुपए देगा। सीरिया में 2 बम विस्फोटों में 24 लोगों की मौत हो गई है। और मुक्केबाजी में अमित पंघल और निकहत जरीन सहित 4 भारतीय मुक्केबाज आज बुल्गारिया में स्टैंजा टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक के लिए खेलेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।